समय सार है और इस समय सार के हम निर्जरा अधिकार की शुरुआत हमने की है और उसमें हमने जो अमृत चंद्राचार्य जी का कलश था 133 नंबर का उसको भी देखा था। अभी आज हम निर्जरा अधिकार का जो पहली गाथा है वो गाथा नंबर 193 उसको हम देखने जा रहे हैं। हम पृष्ठ क्रमांक 7 पर आए हैं, वहाँ मथाड़ू लिखा है। अवे द्रव्य निर्जरानु स्वरूप कहे छे, इसमें किसकी बात चल रही? भाव निर्जरा की बात नहीं है, द्रव्य निर्जरानु स्वरूप कहे छे। शू कहे जो टीका ऊपर नु प्रवचन, विरागी नो उपभोग निर्जरा माटे ज छे। पहले में पहले मूल बात क्या बताई है? जो जीव विरागी है यानी राग का राग जिन्हें नहीं है, ऐसे जो जीव है उनका जो उपभोग है वह निर्जरा माटे छे, यानी उससे निर्जरा ही होने वाली है। क्यों? कि उसका भोग करने का राग भी उनके है नहीं है। पोताना सिवाय पर एटले रागादिक पदार्थों प्रत्ये ज्ञानी ने उदासीनता वैराग्य होय छे, अने ते वैराग्य निर्जरानो हेतु छे। भोग निर्जरानो हेतु नथी, पण ते भोग प्रत्ये जे वैराग्य छे ए निर्जरानो हेतु छे। आ गाथामां द्रव्य निर्जरानी वात छे। ज्ञानी ने द्रव्य कर्म खरी जाय छे ने तेनी आई वात छे। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मानी रुचिनु जेने परिणमन थयुं छे एवा ज्ञानी ने इंद्रियोना भोगोमां रुचि नथी। ज्ञानी ने विषयोनी अने विषयोना रागनी रुचि नथी। देखो यहाँ दो बातों को साथ में लिया है। यहाँ तो कहते हैं कि जो ज्ञानी है उनको जो पंचेंद्रिय के जो विषय है उन विषयों की और उन विषयों का जो राग है उनमें दोनों में ही रुचि नहीं है। यानी परपदार्थ और परपदार्थों के प्रति जो राग है इन दोनों के बारे में उनको राग नहीं है, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो ज्ञानी ने उपभोग एटले जीवादि विषयोना उपभोग निर्जरानो हेतु केवी रीते छे? ज्ञानी ने रागनी रुचि नथी एटले शू? आहा, जेने निर्मल निज न्यायक भाव में सुख बुद्धि प्रकट थई छे। क्या कहा? देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। उसको सुख बुद्धि कहाँ हुई है? आज तक अनादि काल से जीव ने आत्मानुभूति नहीं की है। ऐसे जीवों को तो पर पदार्थों से मुझे सुख होगा, इसके लिए उसको पर पदार्थों में सुख बुद्धि थी। यानी क्या कि पैसे से मुझे सुख मिलेगा, इसलिए पैसे में पैसा मिला तो मुझे बहुत अच्छा, इसलिए उसमें सुख बुद्धि रखी थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि निर्मल निज न्यायक भाव, यानी अपना जो न्यायक पना जो है, न्यायक भाव है, वो कैसा है, निर्मल है। ये किसकी बात चल रही है, निज न्यायक भाव की बात चल रही है। तो इसमें जब सुख बुद्धि प्रकट हो गई, यानी मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, मुझे अन्य किसी से सुख की प्राप्ति होनी ही नहीं है, मैं स्वयं सुख का सागर हूँ, तो उसी से मुझे सुख की प्राप्ति होनी है, तो उस सुख बुद्धि, उसमें सुख बुद्धि हो गई है। ऐसा जो ज्ञानी है, एवा ज्ञानी ने रागमा सुख बुद्धि नथी, पर पदार्थों में तो नथी ज नथी, पण ए पर पदार्थों प्रत्ये जे राग हतो ते रागमा पण एने नथी। झीणी वात छे भाई, समकीती ने शुभाशुभ राग होय छे, पण ए रागनो आदर नथी, ए रागमा प्रेम नथी, ए रागमा रुचि नथी। उन्होंने शॉर्ट में दिया, प्रेम डैश रुचि नथी। अंतरमां शुद्ध न्यायक मां दृष्टि भड़वा थी, यानी जो अपना शुद्ध स्वभाव है इन्हें भड़वा थी, यानी उसमें एकमेक होने से क्या कहते हैं, अंतरमां शुद्ध न्यायक मां दृष्टि भड़वा थी, तेने रागनु पोषान नथी, तथापि नबड़ाई ने लीधे किंचित राग तेने थाई छे। नबड़ाई ने यानी अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही है, इस अपेक्षा कमजोरी कही गई है। दृष्टि नी प्रधानता में तेने मिथ्यात्व संबंधी राग देश नहीं थता होवा थी, उपभोग नवा बंधनों निमित्त थता नथी, अने द्रव्य कर्म ते काल में निर्जरी जाए छे, तेथी ज्ञानी ने उपभोग निर्जरानो हेतु कहो छे। शास्त्र में जे अपेक्षा थी कथन होय तेने यथार्थ ग्रहण करवो जोइए, नहीं तो हम तो फिर ज्ञानी नो उपभोग निर्जरा माटे छे, तो ये अच्छा परमिशन मिल गया उसको, ऐसा हम मानने लगेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो बराबर नहीं समझेंगे तो हमारे दिमाग में अन्य अन्य बातें ही भटकेगी। हवे कहे छे रागादि भावों ना सद्भाव थी, पहले क्या कहा, रागादि भाव है उसका सद्भाव है किनके, तो कहते मिथ्या दृष्टि ने अचेतन तथा चेतन द्रव्यों नो उपभोग बंधनु निमित्त ज थाय छे। जो शू कहे छे के मिथ्या दृष्टि ने रागादि भाव नो सद्भाव होय छे, तेने परपदार्थ प्रत्ये राग नथी, राग छे। ओहो बराबर शब्द का उल्टा कैसा दिमाग में आ जाता है, क्या मालूम क्या कहा। मिथ्या दृष्टि ने रागादि भावों नो सद्भाव होय छे, तेने पर पदार्थ प्रत्ये राग छे, एटलू ज नहीं पण तेने राग नो राग एटले राग नो प्रेम छे, तेथी तेने राग द्वेषादि भावो हया छे। जेनी दृष्टि शुद्ध चैतन्य पर नथी, एवा पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि नी दृष्टि राग पर छे। ये राग है ना, उसके ऊपर दृष्टि जाना, ये पर्याय पर दृष्टि जाना जैसा ही है। पर्याय पर छे, पर्याय मिथ्या दृष्टि राग पर छे, पर्याय पर छे, अने तेथी तेने रागादि भावोनो सद्भाव होय छे। रागादि भावोनो सद्भाव होवाथी मिथ्या दृष्टि ने चेतन ने अचेतन द्रव्यों नो उपभोग बंधनु निमित्त ज थाय छे। अचेतन एटले शरीरादि अने चेतन एटले स्त्रीनो आत्मा इत्यादि द्रव्यों नो उपभोग रागादि ने हयातिमा बंधनु ज निमित्त छे। पाठमा चेदनानम इदरानम चेतन अचेतन एम बे प्रकार लीधा छे। आहा
चेतनानम यानी चेतन का, और इतर यानी जो चेतन नहीं है वो इतर यानी अचेतन का,
उससे जुदे। चैतन्य मूर्ति अतीन्द्रिय आनंद नो रसकंद, चिदानंद प्रभु आत्मा सच्चिदानंद प्रभु आत्मा अनाकुल आनंद नु सत्व छे। हवे आवा निज स्वरूप नी जेने रुचि नथी तेना प्रति जेनु वलन एटले झुकाव नथी ते मिथ्या दृष्टि छे। तेने पुण्य पापना भाव अने वर्तमान पर्याय नी रुचि होवाथी रागादी भावोनी हयाती छे। रागादी भावो हयात होता अज्ञानी ने चेतन अचेतन द्रव्य परद्रव्योनो उपभोग भोगवाना परिणाम नवा बंधनों निमित्त थाय छे। या थोड़ा सा बदली कर दिया। पहले पहले क्या कहते कि चेतन अचेतन के भोगन भोगना, अभी क्या कह रहे हैं परद्रव्योनो उपभोग एटले भोगवाना परिणाम जे छे ते परिणाम ना कारण नवो बंध थाय छे। कुछ प्रश्न है? देखो देखो यहां क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को क्या हो रहा है कि वो पर पदार्थ से मुझे आनंद मिलेगा इसलिए वो पर पदार्थों के प्रति उसको राग है, और जो राग है ये भोगने की जो क्रिया चल रही है, खाने की जो क्रिया चल रही है या कोई घर में रहने के उपभोग की जो क्रिया चल रही है वो क्रिया से कोई बंध नहीं है, लेकिन उसका जो राग चल रहा है उस राग में विशेष रुचि रखे प्रेम रखे तो उसके कारण उसको भोग हो रहा है। अभी यहाँ क्या है कि सम्यक दृष्टि की बात कैसी है कि उसको ना पर पदार्थों के प्रति कोई प्रेम है और उस पर पदार्थों के प्रति जो राग जो कुछ थोड़ा बहुत वर्त रहा है उसको उसके प्रति भी प्रेम नहीं है, इसके लिए उसको बंध का कारण नहीं कहा है। भले वो उसका उपभोग लेता हो लेकिन वह क्योंकि जो कुछ राग जो अभी उत्पन्न हो रहे हैं उपभोग के वह भी क्या है तो कहते हैं कमजोरी के कारण स्वरूप में एकाग्र नहीं हो रहा है इसलिए उसको वो हो रहे। वो राग भले होवे लेकिन वो राग के प्रति राग नहीं है, राग के प्रति प्रेम नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा राग होना ही चाहिए। ख्याल में ना तो कहते परद्रव्यो नो उपभोग एटले भोगवाना भोगवाना परिणाम ते परिणाम जो है वह बंध का कारण है। और वो परिणाम ज्ञानी के नहीं है, ये तो बात क्लियर हो गई ना। जारे ज्ञानी ने पेज नंबर 9 पर फर्स्ट लाइन राग नो रस नथी पन चैतन्य रसनी प्रधानता छे। चैतन्य रस यानी अपने स्वभाव जो है वो स्वभाव का उसको विशेष महात्म्य है। तेथी रागनी रुचिना परिणमना अभावे राग द्वेष नहीं थता हुआ थी पर पदार्थ। ये राग द्वेष तो हो गया अभी बोल रहे और अभी नहीं हुआ थी, यानी जो पहले जो तीव्र जो परिणाम हो रहे थे यानी जब अनंतानुबंधी आदि चल रहा था वो टाइप के जो राग थे वो नहीं थवा थी नहीं हुआ थी पर पदार्थ ने भोगवता पन कर्म निर्जरी जाय छे बंधनु निमित्त थतु नथी। क्योंकि वहाँ उनको वो भोगोने के परिणामों में रस नहीं है विशेष रुचि नहीं है इसलिए उसको पहले जैसे खोटे बंध नहीं होते। जो परनो उपभोग तो कोई खरेखर करी शकतुज नथी। आई जे चेतन अचेतन परनो उपभोग एम कहूं छे ये तो बाह्य निमित्त नु ज्ञान करावा कहूं छे, बाकी परद्रव्यनो उपभोग शू आत्मा करे कि न करे। परद्रव्यनो उपभोग एम कहूं एनो अर्थ ए छे के परद्रव्य तरफना लक्ष्य थी जे राग द्वेषना भाव थाय छे तेनो उपभोग। आवा राग द्वेषना भावनो उपभोग अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करे छे। ये बात क्लियर हो गई? पिनांग भाई बात समझ में आई? यानी यहाँ देखो हमने तो बहुत बार देखा है कि यहाँ हमेशा जब तुलना चलती कंपैरिजन तो ज्ञानी और अज्ञानी ज्ञानी और अज्ञानी की बात कहेंगे तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है। अज्ञानी क्या ऐसा हो रहा है क्या है वो अज्ञानी है तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है तो वो ऐसा ही मानता है कि पर पदार्थ से मुझे सुख होगा तो पर पदार्थों से उपभोग करेगा तो मुझे सुख होगा इसलिए वो पर पदार्थों में ही अधिक रचा पचा रहता है, उनको संयोग टिकाने को देखता है। और जो ज्ञानी है वो जानता है कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ और वो उसको अपने स्वभाव का अनुभव लिया है, इसलिए उसको अपने स्वभाव में ही सुख बुद्धि हुई है, इसलिए ना पर पदार्थों में या पर पदार्थों के प्रति जो पहले जिस टाइप का राग हो रहा था वो दोनों ही उसको नहीं होते। अभी जो कुछ उसके कमजोरी के कारण राग भाव चल रहा है, लेकिन है तो कर रहा है, उपभोग भी कर रहा है, फिर भी उस उपभोग में रस नहीं है, इसलिए उसको नया बंध भी नहीं होता है। इसलिए वो द्रव्य ये ज्ञानी का जो उपभोग है वह निर्जरा का कारण बताया। हाँ
देखो, जैसे बात स्वामी जी ने पहले भी बहुत बार कही ना, जैसे कोई लड्डू में जिसको इंटरेस्ट है तो कहा था पहले कि वो लड्डू का स्वाद नहीं ले रहा है। किसका स्वाद ले रहा है? उसके राग के स्वाद का भोग कर रहा है। तो यही बात यहाँ लिखी, अभी वो किसी भी इंद्रियों के विषय में लगा लेना उसको, ये भोग काहे का चल रहा है? उसका राग को भोग रहा है, क्योंकि परवस्तु को तो कोई भोग ही नहीं सकता है, परंतु वो परवस्तु के प्रति जो आसक्ति भाव है, उस आसक्ति भाव का उसको वेदन चल रहा है, उसको वो भोग रहा है। अब ये ज्ञानी के तो ऐसे राग की रुचि है ही नहीं है, इसलिए उसकी जो ये क्रिया चल रही है या भोगने का जो कुछ भाव भी आएगा, ये राग वहाँ जो होगा वो मिथ्यात्व अज्ञान वाला राग नहीं है, इसलिए उसको राग ही नहीं गिना।
देखो ये पैराग्राफ फिर से पढ़ता हूँ मैं, कौन सा चौथे लाइन से चालू होता है, जुओ लिखा ना, एक एक शब्द बहुत अर्थ धारता है। परनो उपभोग तो कोई खरेखर करी शक्तुज नथी, ये किसके बारे में कह रहे हैं? ज्ञानी के अज्ञानी किसके बारे में कह रहे हैं? हाँ, दोनों के बारे में। ये बात ध्यान रखना, क्या कहा? कोई नथी करी सकतो ने, इसलिए कहा ना ज्ञानी करता है ना अज्ञानी करता है। आई जे चेतन अचेतन परनो उपभोग एम कयू छे, ये तो बाह्य निमित्त नु ज्ञान करावा, यानी कौन है निमित्त इसमें, जिसको यहाँ इसको सुख लग रहा है उसका भोग करने चाहता है, बाकी परद्रव्यों नो उपभोग शू आत्मा करे कि न करे। अभी कहते परद्रव्यों नो उपभोग एम कयू, एनो अर्थ ये छे के परद्रव्य तरफ ना लक्ष्य थी जे राग द्वेष ना भाव थाय छे तेनो उपभोग, आवा राग द्वेष ना भाव नो उपभोग अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करे छे। अज्ञानी ने परद्रव्यों मा इष्ट अनिष्टपनानी बुद्धि छे, तेथी तेने अनुकूल पदार्थों मा राग अने प्रतिकूल पदार्थों मा द्वेष थया करे छे। आवा राग द्वेष नी हयाती ने लीधे तेने चेतन अचेतन द्रव्यनो उपभोग नवा बंधनो निमित्त छे। कौन किसके बात करे? अज्ञानी की। अभी देखिए, ये अभी लड्डू की बात उठाई ना, तो मैं पुरानी स्वामी जी की बात बताता हूँ आपको, कि एक ग्रस्त था, उसको ऐसा कोई जो कुछ होगा तो उसको रोजाना जमनवार में मतलब खाने में लड्डू ही, चूरमे के लड्डू ही उसको अनुकूल होते थे। हाँ, अब क्या हो गया, उसका बेटा मर गया तो खाना नहीं खावे, क्योंकि घर में ऐसा दुखद वातावरण है और वो लड्डू खाएं तो लोगों ने उसको समझाया, नहीं भाई अभी जो हो गया सो हो गया, तुम तो अपने तबीयत को संभालो, लड्डू खाओ। तो सामने लड्डू रखे, तब उसको लड्डू खाने में कितना रस होगा, खा तो रहा लड्डू, वैसे जो सम्यक दृष्टि हो गया अभी, वो कौन, जिसका बच्चा मर गया, यानी जिसके मिथ्यात्व मर गया वो अभी सम्यक दृष्टि हुआ, तो उसको लड्डू खाने में कौन सा रस रहेगा, उसने तो अपने आत्मा को अनुभव किया है। वैसे वो पिताजी को तो वहाँ कोई ऐसा रस नहीं रहा, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा, जिसके मिथ्यात्व चला गया है, अब वो चला जाने के बाद अपने स्वरूप का जिसने अनुभव किया है, उसको तो पर पदार्थों में रुचि रहेगी नहीं, ऐसा कह रहे हैं। और जब वो कुछ राग द्वेष, जो कुछ आवा राग द्वेष ने हया तेने लीधे तेने चेतन अचेतन द्रव्य नो उपभोग, हाँ तो वो तो मिथ्या दृष्टि को होगा बिल्कुल बंद, सम्यक दृष्टि को नहीं होगा। हवे कहे छे तेज उपभोग, यानी जो मिथ्या दृष्टि कर रहा है ना ऊपर, तेज उपभोग रागादि भावों ना अभाव थी, ये सम्यक दृष्टि का क्या हो गया, पहला जो रागादि भाव इने हता मिथ्यादि विना एनो अभाव छे, ये अभाव थी सम्यक दृष्टि ने निर्जरानु निमित्त ज थाय छे। जोयू जे चेतन अचेतन नो उपभोग अज्ञानी ने बंधनु निमित्त थाय छे, तेज चेतन अचेतन द्रव्यो नो उपभोग ज्ञानी ने निर्जरानु निमित्त ज थाय छे। केम तो कहे छे के ज्ञानी ने रागादि भावोनो अभाव छे, ज्ञानी ने मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष नो अभाव छे, तेने रागनी रुचि नथी अने रागनी रुचिनु परिणमन नथी, तेथी रागादि भावोनो तेने अभाव छे। ते कारण थी सम्यक दृष्टि ने चेतन अचेतन द्रव्योनो उपभोग निर्जरानो निमित्त ज थाय छे। अर्थात जूना कर्म उपभोग काले खरी जाय छे, क्योंकि वो तो जब उनका पीरियड पूरा हो गया, स्थिति बंद स्थिति खत्म हो गई, तो उदय में आके निकल जाएंगे बिना फल दिए। क्यों बिना फल दिए? क्योंकि वो जीव उसके तरफ देख ही नहीं रहे ना, अटैच नहीं हो रहे ना उसके साथ। गजब बात छे। अज्ञानी ने उपभोग में नवा कर्म बंधाय छे, जयरे ज्ञानी ने उपभोग में जूना कर्म खरी जाय छे। ये झरी झरी मैं झरी पढ़ रहा था, ये तो झरी यानी निर्जरित हो जाते हैं। हाँ अहो सम्यक दर्शन नो कोई अचिंत्य अलौकिक महिमा छे। अचिंत्य एटले जिसके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों ने तेना परम अद्भुत महिमा नी खबर नथी। शुद्ध दृष्टि ना जोर में हूँ शुद्ध चिदानंद घन स्वस्तु छू एवा एना आश्रय में ज्ञानी ने परद्रव्य ना उपभोग में राग द्वेष थता नथी, एवो अलौकिक महिमा सम्यक दर्शन नो छे। आई कहू ने कि तेज उपभोग एटले के जे उपभोग मिथ्या दृष्टि ने छे, तेज उपभोग रागादि भावोना अभाव थी सम्यक दृष्टि ने निर्जरानु निमित्त ज छे। समकीति ने उपभोग निर्जरानु निमित्त कहू एमा दृष्टि नो जोर छे। आहा ज्ञानी ने चैतन्य स्वभाव में स्वामित्व वर्ते छे, तेथी तेनो द्रव्येन्द्रियो वड़े चेतन अचेतन नो उपभोग निर्जरानु निमित्त छे। उपभोगम इंद्रियैहिम एम पाठ में छे ने, मतलब के द्रव्येन्द्रियो वड़े ज्ञानी ने जे उपभोग छे ते निर्जरानु निमित्त छे। परंतु द्रव्येन्द्रियो वड़े जीव उपभोग तो करी शकात उपभोग तो करी शकातो नथी ने। हाँ ये गलत हो गया, द्रव्येन्द्रियो वड़े जीव जीव डाला ना उसने उपभोग तो करी शकातो नथी ने, तो जीव डालेंगे तो शक तो होगा, और जीव को हटा देवे तो समझने के लिए उन्होंने लिखा है। द्रव्येन्द्रियो वड़े उपभोग तो करी शकातो नथी ने, एटले जीव थी लखो तो बराबर छे। ये अपना मराठी ग्रामर अलग है, गुजराती ग्रामर अलग है, क्या मालूम ये बराबर है क्या? नहीं पण ब्रैकेट राखवो है तो जीव थी एम लखाय ने के नहीं? अच्छा चलो जीव वड़े, हाँ वड़वा दे। चलो चलो ठीक है, हम समझ लेना। परंतु द्रव्येन्द्रियो वड़े उपभोग तो करी शकातो नथी ने, हाँ बरोबर है जीव वड़े, हाँ छे तो एम ज। आई तो उपभोग में इंद्रियो बाह्य निमित्त छे एम निमित्त नु ज्ञान करावी छे। समझाणो काय? अज्ञानी ने राग द्वेष जीतवा छे, ओहो राग द्वेष जीवता छे, तेथी तेने इंद्रियो वड़े जे उपभोग छे ते बंधनु निमित्त छे, अने तेज उपभोग ज्ञानी ने निर्जरानु निमित्त छे, केम के तेने राग द्वेष नो अभाव छे। आवी वात छे, ज्ञानी ने रागादि भाव नहीं होवाथी उपभोग निर्जरानु निमित्त ज छे, ऊपर क्या लिखा, उसके राग आदि भाव है और इसके ज्ञानी के नहीं है, राग द्वेष जीवता छे किधु ने, और इधर लिखते हैं राग आदि भाव नहीं हुआ थी। उपभोग निर्जरानु निमित्त छे, निमित्त छे एम कहूं एनो अर्थ ए छे के द्रव्य कर्म जे खरी जाए छे ते स्वयं पोताना कारणे खरी जाए छे। ज्ञानी ने रागादी नो अभाव वा वितरागता छे, विरागता छे, अने ते विरागता निर्जरानु निमित्त मात्र छे एम वात छे। यानी यहाँ दोनों ही द्रव्यों की स्वतंत्रता बताई, जीव द्रव्य के परिणाम और वहाँ कर्म का जो अकर्म रूप होना है। आथी द्रव्य निर्जरानु स्वरूप कहूँ आ कथन वड़े ज्ञानी ने जे कर्म रजकणों स्वयं खरी जाए छे तेनी बात करी। यानी यहाँ जो द्रव्यों का जो खिर जाना है वो स्वयं अपनी योग्यता से स्वयं वो खिर जा रहे हैं। अरे सम्यक दर्शन शू चीज छे एनी लोगों ने खबर नथी। लोगों तो दया दान व्रत तप भक्ति इत्यादि क्रिया करिए एटले धर्म थई जाए एम समझे छे, पण ए वड़े तो धूळे धर्म नहीं थाय। सांभळने ए दयादान आदि तो राग छे, अने राग नो आश्रय अने रुचि तो मिथ्या दर्शन छे। भाई मिथ्या दृष्टि ना बधाय व्रत अने तप भगवाने बाळ व्रत अने बाळ तप कह्या छे अने ते बंधना निमित्त छे। आई कहे छे जे अज्ञानी नो उपभोग छे तेज उपभोग ज्ञानी ने निर्जरानु निमित्त छे, केम के ज्ञानी ने रागनी रुचिनो अभाव छे, काईक राग छे तेथी जरा उपभोग में जोड़ाई जाय छे, पण ते आई गौण छे। ज्ञानी जोड़वा छता जोड़ा तो नथी, ज्ञानी जोड़ावा छता जोड़ा तो नथी एम आई कहे छे। छीणी बात छे भाई, यानी वो हमें तो दिखता है कि वो जुड़ गया है उसमें, लेकिन वो सच कहो तो जुड़ा हुआ नहीं है। भाई ज्ञानी ने आत्मानी दृष्टि छे, रागनी दृष्टि नथी। अज्ञानी ने रागनी दृष्टि छे, आत्मानी दृष्टि नथी। आत्मानी दृष्टि अने रागनी दृष्टि ए बन्ने मा आसमान जमीन नो फरक छे। जेनी दृष्टि निज न्यायिक स्वभावी शुद्ध आत्मद्रव्य पर पड़ी छे तेने द्रव्येन्द्रिय वड़े चेतन अचेतन ना उपभोग मा राग द्वेष ने हयाती नथी एम कहे छे, अने तेथी तेनो उपभोग द्रव्य निर्जरानु निमित्त छे एम कह्यु छे। अवे भावार्थनो उपरनो प्रवचन। सम्यक दृष्टि ने ज्ञानी कह्यो छे अने ज्ञानी ने रागद्वेष मोहनो अभाव कयो छे, माटे सम्यक दृष्टि विरागी छे। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थाने पण ज्ञानी छे, तेने बीजू ज्ञान भले थोड़ू ओछू होय वा न होय पण तेने आत्मज्ञान छे ने। आहा हा, आत्मानु ज्ञान थयुं छे माटे ते ज्ञानी छे। ज्ञानी ने रागद्वेष मोहनो अभाव कयो छे, केम के तेने मिथ्यात्व ने अनंतानु बंधी ना राग द्वेष मोह छे ज नहीं, माटे सम्यक दृष्टि विरागी छे, तेने रागनु एकत्व नथी माटे ते विरागी छे। स्तवन में नथी आवतु के भरत जी घर में विरागी, भरत चक्रवर्ती छ खंडना अधिपति हता, तेमने 96,000 रानियो 96 करोड़ पायदळ 96 करोड़ गाम हता। अपार वैभव छता तेवो विरागी हता, केम के कोई परवस्तु मा तेमने एकत्व ममत्व न हतुं। आ बधी बहारनी चीज मारी छे हे मंत्र मा मानता न हता। हूँ तो चिदानंद घन ज्ञान अने आनंदनु ढीम प्रभु आत्मा छू एवो अनुभव मंडित दृढ़ श्रद्धान हतुं। જ્યારે અજ્ઞાની હું જ્ઞાનમય છું એમ નહીં પણ હું રાગમય છું, હું પુણ્યમય છું, પાપમય છું, શરીરમય છું, એમ મિથ્યા પ્રતીતિ એટલે શ્રદ્ધાન કરે છે. આ બધી બહારની ચીજો સ્ત્રી દીકરા દીકરી ધન સંપત્તિ આદિ મારી છે એમ માને છે, તેથી તે રાગી છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને પરમા અને રાગમાં એકત્વ નથી, તેથી તે વિરાગી છે. તેને એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિને ભોગની સામગ્રી પ્રત્યે રાગ નથી. તે જાણે છે કે આ ભોગની સામગ્રી પરદ્રવ્ય છે. ક્યાં કહા દેખો, અભી તક તો અભી યહાં સે તો સમ્યક દ્રષ્ટિ કી બાત ચલ રહી, જ્ઞાની કી બાત ચલ રહી, ઇસલિયે ઉસકે બારે મેં ક્યાં કહે રહે હૈ કે તેને યાની સમ્યક દ્રષ્ટિને ભોગની સામગ્રી પ્રત્યે રાગ નથી. તે જાણે છે, શું જાણે છે, કે આ ભોગની સામગ્રી પરદ્રવ્ય છે, મારે અને તેને કાંઈ નાતો નથી. કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી તેનો અને મારો સંયોગ ડેશ અથવા વિયોગ છે. જુઓ, શરીર ઇન્દ્રિયો અને ભોગના વિષયરૂપ પદાર્થો એ સર્વ પ્રત્યે સમકીતીને રાગ નથી. એ તો એ સર્વને પરદ્રવ્ય જાણે છે. એ સર્વ મારા નહીં અને હું એમનું નહીં એમ સર્વને પોતાથી ભિન્ન જાણતો એ તે એમ માને છે કે મારે અને તે સર્વને કાંઈ પણ નાતો એટલે સંબંધ નથી. આહા, આ ઇન્દ્રિયોને તથા શરીરને મારી સાથે કાંઈ સંબંધ નથી એમ તે જાણે છે. અરે, આ ખંડ ખંડ રૂપ જે ભાવ ઇન્દ્રિય છે તે પણ મારો સ્વભાવ નથી. એ ખંડ ખંડ રૂપ ભાવ ઇન્દ્રિય ક્યાં હૈ? ઇન્દુબેન, આપકે ઇસમે હૈ ક્યા પુસ્તક મેં યે બાત? ક્યાં કહે રહે દેખો, યહાં કહે રહે આ ખંડ ખંડ રૂપ જે જ્ઞાન છે, કિધર ગયા? હા, ભાવેન્દ્રિય, ખંડ ખંડ રૂપ જે ભાવેન્દ્રિય હૈ તે પણ મારો સ્વભાવ નથી. તેથી ભાવેન્દ્રિયો સાથે પણ મને કાંઈ સંબંધ નથી એમ જ્ઞાની માને છે. એસા ક્યું કહા? એક સમય માટે શું છે? રાગની ક્યાં વાત છે? ભાવેન્દ્રિયની વાત છે ભાઈ. એ પણ કેવું છે? ખંડ ખંડ સ્વરૂપ જે ભાવેન્દ્રિય છે તે ભાવેન્દ્રિય કિસકો કહેના? હા ભાઈ, નહીં જાણતી. અચ્છા, મેં રૂક ગયા. અચ્છા બેન, આપ જાણો છો? ઇનકા કહેના હૈ ભાવેન્દ્રિય અને જીવ કે રાગ દ્વેષ કે પરિણામ નહીં. કોણ કહેના ચાહેગા? એક મિનિટ, એક મિનિટ. હા, તો ઇન, હા જી, હા હા, દેખો ઇનકા એસા કહેના હૈ કે અભી યે નાગ જો હૈ વો ક્યા હૈ? દ્રવ્યેન્દ્રિય હૈ. और उसके पीछे जो सूंघने की कैपेसिटी वाले जो कोई उधर आत्मा के जो प्रदेश होंगे उसको भावेन्द्रिय कहेंगे. अब वो भावेन्द्रिय जो कर्णेन्द्रिय है, चक्षु इंद्रिय, सब में लेना कि द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय दो है ना, तो द्रव्येन्द्रिय तो पुद्गलात्मक है, भावेन्द्रिय तो आत्मक है, आत्मा के है. अभी कहते हैं वो भी कैसे हैं? खंड खंड रूप है और वह भी मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा कह रहे. क्योंकि मैं तो अखंड स्वभावी हूं ना, अखंड ज्ञान चले, केवल ज्ञान स्वरूपी स्वभावी मैं हूं ना, इसलिए कहते हैं कि ये भावेन्द्रिय भी मेरा स्वभाव नहीं है. हाँ, वही बरोबर है, सूक्ष्म ज्ञान. पर उसको तो भाई भावेन्द्रिय किसको कहना? ये वो तो सूक्ष्म ही है ना. हाँ, खंड खंड ज्ञान जो हो रहा है उसको यहां भावेन्द्रिय कहा है? देखो, बोलो बोलो.
एक सूक्ष्म ज्ञान है ना, उसकी को भावेन्द्रिय कहते हैं. अभी अपने डॉक्टर ने भी कहा था ना, अकेले आत्मा के प्रदेशों को नहीं लेना, वहाँ जो ज्ञान होता है.
नहीं, नहीं, वहाँ जो प्रदेश है उन प्रदेशों के द्वारा जो जानना हो रहा है, उसको भावेन्द्रिय कहेंगे. प्रदेशों को थोड़ी कहेंगे, क्योंकि वो तो रोटेट होते ना. ये भाव इंद्रिय तो जीव के ज्ञान की अवस्था है, और वो कैसी अधूरी है ना, खंड खंड कहा ना, इसलिए उसको कैसे क्यों, जो आत्मा का ज्ञान गुण है वो कहाँ है, पूरे आत्म प्रदेशों में व्यस्त मतलब एक्यूपाइड है ना, तो जो प्रदेश वहां आएंगे वो जानने का कार्य करेंगे। अभी मान लो यहाँ जो आत्मा के प्रदेश है तो उतने जानने में तो पूरा ही आत्मा के प्रदेशों में जानना होगा, लेकिन माध्यम वो है ना आग का, तो आत्मा के प्रदेश है वहां तो फिर वहां तो रस गुण का कार्य नहीं हो रहा है। अभी जो हमें दिखाई दे रहा है जो पुद्गल, उन पुद्गलों में अन्य अन्य गुण भी है ना, लेकिन यहाँ तो चक्षु के द्वारा तो सिर्फ वर्ण को ही जानेंगे, इसलिए तो उसको अधुराश कहा है, खंड खंड कहा है, और एक साथ सारा नहीं होता है, एक एक इंद्रियों के माध्यम से एक एक मतलब एट ए टाइम वन एक इंद्रिय का ज्ञान, एक इंद्रिय द्वारा ज्ञान होगा। समझा भाई समझा, देखो 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 मैं बताता हूँ आपको, आत्मा के प्रदेश जो है ना एक दूसरे से लगते हुए हैं, ये हमने आत्मा तो अखंड ही है उसको हमने कहा कि वो असंख्य प्रदेश है। अब क्या होता है, जैसा आपने बैलगाड़ी देखा है तो बैलगाड़ी का चक्का जो होता है तो उसके आरे होते हैं ऐसे, जिसको हम स्पोक्स कहते हैं, तो वो तो एक दूसरे से लगे हुए, लेकिन वो कैसा ऐसा ऐसा मुंह होते तो नीचे का ऊपर गया, लेकिन वो यहाँ से जो यहाँ जो लगा हुआ है वो तो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। वैसे आत्मा के जो प्रदेश है वो पूरे शरीर में, कहो अभी शरीर के माध्यम से समझाएंगे, वो ऐसा रोटेट होते हैं, लेकिन बीच के जो आठ जो है मध्य में वो रोटेट नहीं होते, तो उसको लगते हुए अन्य घूमेंगे, यानी अभी आंखों के पीछे जो हमारे आत्मा के प्रदेश है वो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद पैर में जावे, यानी वहां तक जावे, फिर वहां से ऐसा घूमे, तो वो आत्म प्रदेशों का घूमना कहते हैं या बदलना कहते हैं। लेकिन यहाँ समझो ऐसे लाइन में खड़े हैं समझ ले, तो यहाँ का यहाँ जावे और वहां का इधर बीच में जावे और उधर का इधर जावे, ऐसा नहीं होगा, वो प्रदेश छुट्टे नहीं है ना, ऐसा एक प्रदेश दो प्रदेश दस प्रदेश मिलके आत्मा के प्रदेश हुए ऐसा नहीं है। जैसा हमारा ये जो घर है, मान लो ये हॉल 20x20 फुट का है, तो हम 400 स्क्वायर फुट कहेंगे तो उसके टुकड़े थोड़ी हैं, तो है अखंड। वैसे आत्मा के जो ज्ञान गुण है या आत्मा के जो प्रदेश है वो तो अखंड है, उसको हम साइज वाइज गिनने के लिए उसको कहेंगे असंख्यात प्रदेश है।
जैसे भूगोल में अपने ये साइंस वाला भूगोल, जैन भूगोल ने क्या कहते हैं, पृथ्वी घूमती है, तो घूमती है तो इंडिया अमेरिका में जाता है और अमेरिका का कोई सिटी वो इधर आता है, ऐसा होता है क्या? तो घूमना का अर्थ क्या है, पूरा ही रोटेट होना। हाँ देखो देखो, हाँ बराबर देखो क्या है, पूरे आत्मा में कर्मों का क्षोभ, आपका ऐसा प्रश्न है कि आंखों के पीछे के आत्म प्रदेश वर्ण को ग्रहण करने का यानी वर्ण को जानने का काम करते हैं, परंतु वो आत्म प्रदेश आगे चले जाएंगे अन्य जगह ग्राण इंद्रिय के पास आ जाएंगे तो सूंघने का काम करेंगे, तब वो देखने का काम नहीं कर रहे, बराबर है ना, और अन्यत्र चले जाएंगे पैर में चले जाएंगे तो वहां कार्य स्पर्श का उनके ज्ञान होगा, तो ऐसा क्यों, बराबर है ये प्रश्न आपका। देखो आत्मा में जो क्षोभशम है पांचों ही इंद्रिय, अभी हम पंचेंद्रियों की बात करेंगे, पंचेंद्रिय जीवों में ज्ञान का इतना उघाड़ है कितना कि पांचों ही इंद्रियों के द्वारा जाने, एक बात। तो ये जो क्षोभशन है वो सब पूरे ही आत्म प्रदेशों में समान है।
यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, आत्मा के जो प्रदेश है उसमें कौन फैला हुआ है, ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण क्या कर रहा है तो जानने का कार्य कर रहा है, और ये जानना ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के कारण से उसको माध्यम इंद्रिया लगेगी, मीडिया, तो आँख के पीछे गई तो जानने का मतलब वर्ण को जानेगी, नाक के पीछे गए तो वहाँ सूंघने का जानना होगा, जानना ही है ये समझ लेना पहले, जानना इज अ बेसिक थिंग। तो अभी आपके प्रश्न का उत्तर अभी आगे बताएंगे।
तो अभी वर्तमान में जितना कर्मों का क्षोभ समय कहो या जितनी जीव की योग्यता है उतना जानने का जो शक्ति है, जानने की शक्ति, वो सभी आत्म प्रदेशों में समान है। पर अभी ये जो द्रवेंद्रिया है जो अभी सभी आत्म प्रदेशों के द्वारा हम जान भी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो सब है, फिर भी अभी लिमिटेशन क्या है, इंद्रियों का निमित्त बनता है कि जहाँ द्रवेंद्रिया बनी है, कौन सी, चक्षु इंद्रिय, वहीं से वो देखने का कार्य होगा। तो हम तो कहते वो तो आत्मा को मदद करती है, अरे मदद कर रही है कि वो रोक रही है, सभी आत्म प्रदेशों में देखने की शक्ति है परंतु अभी विशिष्ट जगह से ही हम देख पाते हैं, हाथ से नहीं देख पाते हैं, नाक से नहीं देख पाते हैं, जीभ से नहीं देख पाते हैं। तो वहां जहां चक्षु इंद्रिय बनी है, द्रव्य इंद्रिय और उसके जो कुछ उपकरण वगैरह से, तो वहां से ही वो वर्ण को ग्रहण करने का कार्य करेगा। आत्म प्रदेश तो सभी सब कुछ जान सकते हैं, उपयोग रूप जो कार्य है वो वहीं पर आके होगा, इसलिए बाह्य द्रव्य इंद्रियों में कुछ खामी होगी तो वहां जानने का भी कार्य नहीं हो रहा है। और यदि आत्मा में शक्ति नहीं पाती तो बाहर का इलाज करके भी कुछ नहीं हो पाता, तो वह कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर दिया या चश्मा लगा लिया और हम देख पाते, उसका अर्थ क्या है? तो वहां द्रवेंद्रियों में बाह्य में जो कुछ उसका निमित्त बन रहा था, ऐसा भी होता है ना, वो बाह्य निमित्त भी नहीं हो रहा है, वहां निमित्त से कुछ नहीं हो रहा है, हम निमित्त की भाषा में बता रहे हैं। तो आत्मा के सभी प्रदेश अपना यानी जानने का कार्य करेंगे परंतु विशिष्ट इंद्रियों के द्वारा विशिष्ट विषय को ग्रहण करना, यानी जहाँ चक्षु इंद्रिय है वहाँ के आत्म प्रदेश वर्ण को ग्रहण करेंगे, वर्ण को जानेंगे। कर्णेन्द्रिय के पास जहाँ आत्म प्रदेश है वो साउंड को यानी शब्दों को जानेंगे। वैसे पूरे आत्मा में शोभशम की शक्ति पड़ी है, आत्मा जानता है, वो अपने पूरा ज्ञान गुण तो अखंड एक है, परंतु अभी ये जो विशिष्ट द्रव्येंद्रियों के द्वारा जो, क्योंकि एट ए टाइम एक को ही जानता है, जिस इंद्रिय का विषय जानता है, अभी जब वर्ण को देख रहा है या जान रहा है तब वो उस समय में शब्द को नहीं सुन रहा है। हमें तो लगता है हम एक साथ, परंतु इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है हम पांचों इंद्रियों के द्वारा एक साथ, देखो हम टीवी पर देख भी रहे और सुन भी रहे, परंतु इतना फास्ट फास्ट होता है कि हमें लगता है हम एट ए टाइम कर रहे हैं, परंतु एट ए टाइम नहीं होता, हरेक इंद्रियों में वो यानी चेंज होकर पलट पलट कर सभी इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसीलिए उसको खंड खंड कहा। केवल ज्ञानी कैसे जानेंगे, सभी इंद्रियों के द्वारा जानेंगे कि नहीं, तो उन्हें ये इंद्रियों की लिमिटेशन नहीं है, आत्म प्रदेशों के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो कुछ स्पर्शन संबंधी ज्ञान है, रस संबंधी ज्ञान है, वो पुद्गल का तो जानेंगे ही जानेंगे, अन्य सभी अरूपी पदार्थों को भी प्रत्यक्ष जानेंगे, ख्याल है, इसलिए उनको अखंड कहा, और ये अपना जो क्षोभशम ज्ञान है उसको खंड खंड कहा। आगे पढ़ेंगे,
और कुछ है प्रश्न भैया
पूछना, बिल्कुल मन में कोई रखना नहीं। नहीं नहीं, पूरे आत्मा के प्रदेश घूमते हैं। अभी ये धवला में जो चल रहा है हमारा कर्मों का प्रकरण चल रहा है, तो वहाँ तो ये बात है कि आत्मा के प्रदेश जो घूम रहे हैं वो तो वहाँ वो प्रदेशों के साथ वो तो कर्म भी घूम रहे हैं।
देखो अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, हर समय मैं कर्म बांध रहा हूँ ना कि नहीं, हाँ हाँ, तो कर्म इधर ही छोड़ के जाऊँ ना, मैं नया कर्म ले लूँ, ऐसा नहीं चलेगा।
तो वहाँ तो ऐसे कर्म को तो चिपके भी हुए हैं और वो तो जीव के साथ उसका भी गमन होता है।
देखो पहले मूल में हम ये बात, मूलभूत बात ये समझ में लेंगे हम तो बाकी सब बातें आएंगी हाथ में, कि मैं ज्ञान गुण सहित हूँ। तो ज्ञान गुण जो है वो मेरे सर्व भागों में है, एक बात, अवस्था के हाथ बात छोड़ दो। तो मैं मान लो कि ऐसा ये जो कुछ आकार दिख रहा है वहाँ हर जगह ज्ञान है। अब यहाँ स्त्री लग, मतलब आयन गर्म हो गई या चाय का कप हमने हाथ में लिया और चाय हाथ में आई, तो खाली इतने ही पद, क्या बोलते हैं, इतने ही आत्म के प्रदेश जानेंगे क्या, कैसा होगा? अरे पूर्ण आत्म प्रदेश जानेगा, ये जला है।
ये अहमदाबाद में मैंने प्रश्न पूछा था, ऐसे कोई यहाँ कोई पिन अपने चुभाई तो यहीं पर पेन होता है, बाकी जगह नहीं होता, ये तो ज्ञान यहीं से हुआ ना। तो कहते यहाँ पिन चुभ गई, ऐसे पूरे आत्मा नहीं जाना।
अरे तुम चलते चलते पैर में तुम्हारा खिला आ गया तो क्या ये पैर ही, पैर के परमाणु थोड़ी जानेंगे। जानना तो पूरे आत्मा के एक 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 प्रदेश में बैठा हुआ जो ज्ञान गुण है उसके द्वारा हो रहा है, पर वो माध्यम है ना स्किन, स्पर्शन इंद्रिय, ख्याल में है ना। तो मैं
तो चुप गया तो चिल्लाए क्यों, जीव ने क्यों कार्य किया वहां पर?
नहीं, कहने का मतलब यह है कि हम इतना ही संकुचित रखते हैं कि क्योंकि हमने सीखा ही ऐसे ना कि ये जो द्रव्य इंद्रिया है इसके पीछे जो आत्मा के प्रदेश है वो भाव इंद्रिया है, इस तरह से। तो वो तो जाने तो पूरा ही आत्म प्रदेश में जो ज्ञान गुण पूरा फैला हुआ है वो अपूरा का पूरा जानेगा।
वो उपयोग के लिए वहां से वो इंद्रियों का निमित्त बनता है, इसलिए कहते वहां के आत्म प्रदेश जानते हैं। पूरे आत्म प्रदेश वो उपयोग रूप, वहां से उसका कार्य चलता है, इस तरह से लेना उसको भी, क्योंकि समझाने में ऐसी लिमिटेशन पड़ती है ना, अभी क्या करें।
ये मेरे ख्याल से पहले बात हुई थी भाई, अभी आपने अच्छा किया। हाँ देखो अभी मैंने नहीं बोला
वो विषय बदला ना उसने। देखो ये कर्मों की बात कैसे, अभी जैसे पंखे में हमने उसमें कागज चिपकाया तो पंखा घूम रहा है तो कागज भी घूम रहा है कि नहीं उसके साथ, वैसे कर्म भी आत्मा के साथ है एक क्षेत्रावह का, तो उनके प्रदेशों के घूमने के साथ कर्मों का भी वहां घूमना होगा, ऐसी बात है। हाँ शरीर भी घूमेगा
सब सब सब, कारमान शरीर भी घूम रहा है, तेजस शरीर भी घूम रहा है, जो औदारिक शरीर है वह भी घूम रहे हैं।
कैसी आताप? हाँ देखो देखो, कल इसमें आए क्या आपके, जरा ये निकालना आपका जो आताप जो है ना, आताप ऐसा वहां था, इसी में आया था ना क्या, मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में था। देखो आताप एक आताप नाम कर्म का नाम कर्म भी है, आताप नाम कर्म, कहीं कहीं आताप भी लिखते हैं,
आताप कहो या आताप कहो। हाँ
तो वो किसके होता है, उसका उदय किसको होता है? तो जो सूर्य विमान है जिसको हम सूर्य कहते हैं, सूर्य बिंब जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी का एक है ना, तो उसमें वो आताप नाम कर्म का उदय है, तो आताप नाम कर्म उसके होता है, तो अत्यंत उष्णता और प्रकाश उसमें पाया जाता है, हम इतने दूर से भी देखते हैं तो उसमें उष्णता और प्रकाश है, तो वो आताप नाम कर्म है, बराबर, वो उसी में होता है, अन्य कहीं नहीं पाया जाता।
यानी आपका कहना पृथ्वी कायिक जीवों में ही वो होगा,
पृथ्वी कायिक वो भी सूर्य बिंब के पृथ्वी कायिक में,
हाँ।
ये आताप नाम कर्म का उदय पाया जाता है, इसलिए वहां वो उष्णता सहित प्रकाश है। और कल जो बात आई थी वो मुझे निकाल के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न वो कर्णान योग में भी पूछा कि अग्नि का एक जीवों में भी आताप नाम कर्म का उदय होता होगा, तो नहीं, हाँ, क्योंकि आताप नाम कर्म ये शुभ प्रकृति है, वो तो केवल पृथ्वी कायिक, वो भी बादर पृथ्वी कायिकों में ही होती है। अग्नि कायिकों में जो उष्ण स्पर्श है और जो कुछ प्रकाश है वो उनका स्पर्श नाम कर्म, जो उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय है उनका, अग्निकायिक में जो उष्णता पाई जाती है उसको आतप नहीं कहते हैं।
इसीलिए मैंने आपको क्लियर करवाया कि आतप नाम कर्म का उदय पृथ्वी का एक जीवों में, वो भी वहाँ सूर्य विमान वाले जो पृथ्वी का एक होंगे उनके ही है। ख्याल में
तीसरे अधिकार में थी ना वो बात।
हाँ
अंत में कहीं हाँ हाँ ये आघाती के आघाती कर्म प्रकृति में
बदाम हशे
ये
नाम कर्म का है ना वहाँ।
नाम कर्म बड़े अशुभ गति जाति दुख मानते हो तो अभाव थयो जाति में किंचित दुख दिन मानते बिना दुख वहाँ आताप यानी ऐसे उसको पीड़ा के अर्थ में वो आताप शब्द आया था। हाँ देखो देखो यहाँ देखो वेदनीय कर्म में अशांतता उदय थी शरीर में रोग क्षुधादि दुखना कारणों थता हता पर हवे शरीर ज रह्यु नहीं। किसकी बात है सिद्धों की त्या क्या थी थाय शरीर नी अनिष्ट अवस्था ना हेतुरूप आतापादिक हता। शरीर की अनिष्ट अवस्था होने का कारण क्या था आताप आदि। आताप यानी सूर्य की उष्णता या कोई ठंडी यानी हम अपनी भाषा में गर्मी ठंडी ऐसी जो कोई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ऐसा कहूँ ना यहाँ आताप का अर्थ वो लेना था यानी यहाँ वो आताप यानी वो नाम कर्म वाला आताप नहीं लेना था।
गर्म उष्णता मतलब
हाँ उष्णता
बुखार जैसा कोई समझ लो
यानी शरीर की अवस्था ऐसी अनिष्ट हुई क्यों क्योंकि वो सनस्ट्रोक हुआ ये आताप का अर्थ वहाँ वैसा समझना। सनस्ट्रोक हुआ बहुत गर्मी थी बाहर धूप इतनी थी वो यहाँ आताप का अर्थ वहाँ ऐसा लेना। आदि लिखा ना आगे आदि यानी कहीं शीत थी बाहर इतनी ठंडी थी या बहुत बरसात आई थी इसलिए वो शरीर में कोई तकलीफ हो गई बुखार आ गया कहो या कोई इन्फेक्शन हो गया तो यह आतापादिक में अन्य सब चीज़ें ले लेना। तो वहाँ आताप ये नामकर्म का उदय नहीं है परंतु ये धूप आदि को यहाँ आताप कहा ऐसा मैंने कल कहा था। हाँ नहीं नहीं देखो पुण्य इसलिए मैंने कहा कि मैंने तो शॉर्ट में इनको बता दिया कि यहाँ क्या कहते हैं शरीर की अनिष्ट अवस्था के हेतुभूत आतापादि। शरीर की अनिष्ट अवस्था वाली बात थी और जो आताप है वो नाम कर्म है और वो भी शुभ प्रकृति है और वो अनिष्टपना के हेतु नहीं है वो तो पृथ्वी का एक जो कोई है सूर्यबिंब का पृथ्वी का एक उसमें उसके कोई अनिष्टता नहीं उसके अनिष्टता नहीं भले अपने लिए वो अनिष्ट हो उसकी वो पुण्य प्रकृति का उदय है। वो तो शॉर्ट में सबके लिए नहीं था मैंने इसे वो आताप का डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो बात उठाई थी। और कोई प्रश्न है हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ यानी जो क्षोभम ज्ञान है अल्प ज्ञान है वो मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ हाँ वो लक्षण कहाँ देखो नहीं विरोधाभास इसलिए लगता है कि हम ऐसा कि ना कि निगोद में भी इतना ज्ञान तो उघाड़ है ही वो उसका स्वभाव है स्वभाव का अंश कहते हैं परंतु यहाँ कौन सी स्वभाव की बात है त्रिकाली पूर्ण स्वभाव परिपूर्ण स्वभाव। स्वभाव तो वो कहते हैं कि जो परिपूर्ण है तो अपना स्वभाव कितना है या कैसा है तो केवल ज्ञान अपना स्वभाव है। तो ये क्षोभम रूप अभी जो हीनता हो रही है ये मेरा स्वभाव नहीं ऐसा वहाँ का जिस अपेक्षा से बात की वैसा उसको लेना है। जो है वह है तो स्वभाव का अंश पूरा स्वभाव नहीं है अंश है ना वो अपूर्णता है इसलिए वो कहेंगे वो मेरा स्वरूप नहीं है मेरा स्वरूप तो केवल ज्ञान है यानी उतने मात्र मैं इतना ही हूँ मान लेते कोई ज्यादा दो चार लोग है उसमें एक ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हम क्या वो क्या समझता है मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ यानी उसने अपना स्वरूप उतना ही निश्चित कर लिया। अरे पर वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है उसने वो भूल गया तो इसलिए यहाँ कहते हैं। और कोई रही
है प्रश्न? यहाँ पर जो पाथ है वहाँ तो जो आत्मा का जो त्रिकाली स्वभाव जो हमने देखा था, कौन सा? के सर्वज्ञ स्वभावी। देखो ये समय सार में आगे चलकर हमको 47 शक्तियां बताएंगे, यानी शक्तियां यानी एक्चुअली वो आत्मा के स्वभाव ही है। शक्तियां इसलिए कहा कि वो जो गुण है वो उस रूप पर्याय उसकी परिणमित हो रही है, ऐसे बताएं। अभी आप जो कह रहे हैं कि यहाँ हमको थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन बात तो यह है कि यहाँ जो बात कह रहे हैं कि वो त्रिकाली द्रव्य जो है उस त्रिकाली द्रव्य के कंपैरिजन में ये थोड़ा बहुत कुछ जानना है, वह जीव का स्वभाव नहीं है। अब जो निगोदिया जीव है वहाँ उसका कुछ न कुछ जानना चल रहा है, और वह पुद्गल को वह जानना नहीं हो रहा है क्योंकि वह अचेतन है, और यह जीव चेतन है और उसकी कुछ वहाँ प्रकटता दिख रही है, इसके लिए कहेंगे कि वह उसका वो चेतन वह आपने क्या पूछा था
लक्षण है।
लक्षण है
वो प्रकट लक्षण है ना,
प्रकट लक्षण है। यानी जैसा हम कहते हैं ना कि जैसा हमने किसी को सुई चुभाई तो उसको वहाँ जीव है उसको ज्ञान होगा, वो चिल्लाएगा। और यहीं कोई ऐसा डेड बॉडी यहाँ पड़ी है उसको कितनी भी सुई चुभाओ या उसको जलाओ वो चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ चेतनत्व का कोई लक्षण ही नहीं है। इस अपेक्षा से वो उसका लक्षण बताए।
देखो उपयोगो लक्षणम कहा, उपयोग है ना वो जानने रूप, जो जानना देखना रूप जो उपयोग है वो जीव का लक्षण है। ऐसा नहीं कहा कि केवल ज्ञान ही जीव का लक्षण है, ऐसा कहेंगे तो अरिहंत सिद्ध ही जीव ठहरेंगे और बाकी तो हम सब अजीव ठहरेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु जीव का लक्षण कहा वो जानना है, परंतु जीव सामर्थ्य कितनी, उसका स्वभाव कितना है, तो केवल ज्ञान वो उसका सामर्थ्य, पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण शक्ति। स्मृति, हाँ देखो ये जो क्षोभशम ज्ञान है वो लब्धि और उपयोग दोनों मिलकर वो क्षोभशम, लब्धि यानी कितना क्षोभशम का उघाड़ है उसको लब्धि कहते हैं, और स्मृति यानी क्या है जो पहले जाने, लब्धि यानी क्षोभशम रूप उघाड़ उसको लब्धि कहते हैं। लब्धि उपयोग हो भावेन्द्रियम कहा ना, लब्धि और उपयोग मिलकर भावेन्द्रिय है, तो क्षोभशम का उघाड़ कितना है उसको लब्धि कहे। और स्मृति में क्या है, कोई पूर्व में जानी हुई चीज जो धारणा में है उसको कालांतर के बाद याद करते हैं वो जो स्मृति कहेंगे, वो तो मति ज्ञान का भेद है। मन के द्वारा हम उसको याद करते हैं वो मति ज्ञान हुआ, स्मृति हुई वो। और लब्धि तो क्षोभशम ज्ञान में होती ही है, लब्धि और उपयोग मिलकर वो क्षोभशम ज्ञान होता है, तो ये लब्धि तो सभी में चलेगी, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सभी ज्ञानों में वो लगेगी। कौन से? क्षोभशम ज्ञानों में, हाँ चारों में, चारों की जो क्षोभशम रूप उघाड़ है उसको हम लब्धि कहेंगे, और उस उसमें जो उपयोग लगेगा उसको उपयोग कहेंगे। ये अभी हम जब कहते हैं चार ज्ञान के धारी है तो लब्धि में चारों ज्ञान है, और उपयोग में अभी एट ए टाइम कोई मति ज्ञान में उपयोग होगा या श्रोता क्या अवधि में, इस तरह से उपयोग लेना।
यानी एट ए टाइम एक ही पर्याय चलेगी ना, या तो अवधि ज्ञान में कार्य होगा या तो मन पर्याय में होगा उपयोग रूप से, तो अन्य में नहीं होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी है तो उसको क्षोभशम कहा। अभी ये कल लेंगे ये पूरा पैराग्राफ। जावनी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवणी मस्तक